ओम शांति। बाबा की इस तपस्या भूमि पर हमारी 3 दिन की बच्ची का आज पहला सेशन और उसमें भी बाबा के विशेष अनन्य रत्न जिनको साकार बाबा ने ही नाम दिया है, आदरणीय चक्रधारी दीदी बाबा और मम्मा की पालना के साथ साथ उन्हों के बहुत समीप, दादियों के बहुत समीप और शुरू से ही आदरणीय हमारी गुलजार दादी जी जगदीश भाई के साथ में वर्षों तक आप रहे, अनुभवों की खान कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले 50+ ईयर्स से बाबा के इस बेहद यज्ञ में सेवाएं कर रहे। दिल्ली में जब पहला सेंटर कमला नगर खुला तब से आप वहां और उससे कनेक्शन के सेंटर्स की डायरेक्टर और उसके साथ साथ रशिया में भी सेवाएं प्रारंभ करने के ही आप निमित्त बने, तो टोटल रशिया के सेंटर्स को भी की भी आप डायरेक्टर हैं और अपनी ब्रह्मा कुमारीज की वेमेन विंग की आप चेयरपर्सन हैं। बाबा के ज्ञान रत्नों को इतनी सरलता से अनुभव के द्वारा हम सबको प्रैक्टिकल में अनुभवी मूर्त बना देती हैं। देश विदेश में अपने अनुभवों से अनेका अनेक आत्माओं के जीवन की आप प्रेरणा मूर्ति हैं, तो हमारा आज का ये सेशन भी साकार बाबा और मम्मा की जीवन की जो आपने स्वयं अनुभूतियां की हैं वही अनुभव से हम सबको अनुभवी बनाएंगी और उस तपस्या भूमि पर आप सब भी प्रैक्टिकल में वही दृश्य इमर्ज करते हुए उसको अनुभव करेंगे। आदरणीय चक्रधारी दीदी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है। ओम शांति।
ओम शांति। हम मुझे शारदा बहन जी ने परम सौभाग्य प्राप्त कराया कि मैं आपके प्रथम सत्र में ही आपको मिलने के लिए यहाँ पहुंच गई। मैं ऐसा कहूंगी कि इस प्यारे बाबा के सर्वोच्च तीर्थ स्थल पर परम सौभाग्यशाली आत्माओं को देखते हुए आप सबको हार्दिक नमस्कार करने को दिल करता है। कैसे तीर्थ स्थल पर भी आम व्यक्ति नहीं आ सकता, वो भी समझकर, सोचकर, अधिकारी बन अधिकार लेने के उद्देश्य से। इसलिए आप सबने ऐसी महान लॉटरी को प्राप्त किया है, ये आप सबका बहुत बहुत परम सौभाग्य। मैं कभी सोचती हूँ जब ये कहते हैं कि माता पिता की पालना ली, मुझे याद आता है जब कभी गोकुल, वृंदावन, मथुरा इन सब जगहों पर भक्ति मार्ग में यात्रा किया करते थे तो कहते थे ये कुंज गली हैं, जहाँ श्री कृष्ण आंख में चोनी का खेल गोपियों के साथ खेलते थे। ये वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण की माँ श्री कृष्ण को माखन निकाल कर, वो मटकी भी बड़ी हुई है वहां पर, और मटकी से निकालने वाला माखन निकालने वाला भी रखा हुआ है, वो माखन निकाल कर उनको खिलाया करती थी। ये वो स्थान है जहाँ भगवान गोपियों के चीर हरण कर, इस पेड़ के साथ वो चीर लटक रहे हैं, वो आज भी लटकते हुए आप देख सकते हैं, वो लटक रहे हैं, ये वो स्थान है। तो एक एक स्थान पर जाते थे तो भक्ति में कहते थे हर स्थान का अपना अपना महत्व है। तो जिस भक्ति को मैं मानती थी उसमें पान और सुपारी ऐसे श्रेष्ठ स्थल पर चढ़ाते थे, और नतमस्तक होकर ऐसा लगता था कितनी भाग्यवान होंगे वो गोप और वो गोपिकाएं जो भगवान के साथ आंख मिचौनी खेलते, भगवान मटकी फोड़ते और उनके कपड़े उठाकर ले जाते और गोपियां अपने कपड़ों की पुकार करती। ये वो स्थान है जहां वो चारों तरफ चक्कर लगाते और उनके माँ बाप उन्हें यहाँ रहकर पालना देते। देखिए जब ज्ञान में आए तो पता चला ये सब तो केवल मात्र यादगार के स्थान बनाए हैं, सत्यता कोसों ही दूर है, ये सत्यता नहीं है। ये ऐसी कुंज गली, ये ऐसा स्थान जहाँ श्री कृष्ण खेले, ये ऐसा स्थान जहाँ पर माँ उसको माखन निकाल के खिलाए, क्या मिट्टियां पड़ी हुई हैं, क्या बुरी हालत का स्थान है। लेकिन जब प्यारे बाबा के बने तो बाबा ने सारे सत्य रहस्य हम सबके सामने खोले। उस समय ऐसा आया कि सचमुच हमने सच्चे दिल से शायद भक्ति की, शायद नई वास्तविकता है जो हमको प्यारे बाबा ने सत्य रहस्य बताए। आज जिस स्थल पर आप बैठे हो ये वो स्थल है जो सत्य सर्व शक्तिवान पिता परमात्मा अपने बच्चों के साथ यहाँ घूमा करते और अपने रथ में विराजमान होकर, कभी बच्चों के कपड़े धुलाई होते और स्वयं कपड़े लेकर सटका एक लगा देते, कभी वो स्थल जहाँ थोड़ा सा आप पुराने पिछले गेट से बाहर निकलेंगे तो यहाँ गौशाला बनी हुई थी, वहाँ गौशाला में अपने बच्चों को उंगलियां पकड़कर साथ ले चलते, चलो बच्चे मैं तुझे अपनी गौशाला दिखाता हूँ, और गौशाला में किसी गाय का नाम, गाय की बच्चिया का नाम, अलग अलग नाम रखे होते, लच्छू बच्ची कहाँ है, ऐसे लच्छू बच्ची भागती हुई छोटी सी बच्ची आती और बाबा के पास आकर ऐसे प्यार से बाबा को पांव चाटती, सिर घुमाती, कभी बाबा कहता कुमारका कहाँ गई, कुमारका भी भागती आ रही है, ईशु भागती आ रही है। बाबा ने अपने बच्चियों के नाम इन गाय की बच्चियों और गायों पर रखे और कितने प्यार से बाबा उनको अपने हाथों से खाना खिलाते, जो भी दाना लेते उनको अपने हाथ से खिलाते। तो ना केवल बच्चों से उनको प्यार था लेकिन इस प्रकृति के पशुओं से भी उनका उतना ही प्यार था, जिसका आप सब कई बार एग्जाम्पल सुनते हैं कि जब सतगुरु वार का भोग होता तो लाल सी वो चिड़िया जब अंदर आती थी तो हम देखते थे तो बाबा कहते थे मेरी बच्ची अभी आने वाली है, उसके लिए थोड़े दाने यहाँ रख दो, भोग का थोड़े अंश यहाँ रख दो, मेरी बच्ची खाएगी। अब कोई नया सुने कहेगा कौन स्पेशल बच्ची जिसको जमीन पर रख दिया गया वो बच्ची आकर खाएगी, वो बच्ची चिड़िया होती थी और वो चिड़िया वो भोग जब होता है वो जरूर आती थी और खाती थी, और प्रतिदिन बाबा थोड़ा सा उसके लिए रखवा लेते थे, ये बाबा की गद्दी है ये बैठ के वो खाती थी, और बाबा के अव्यक्त होने के मैं समझती दो दिन तक तो वो अंदर आई, दाना भी डाला लेकिन दो दिन के बाद वो अंदर नहीं आई। ऐसा नहीं कि वहां दाना नहीं डाला गया, दाना रखा गया लेकिन दाना खिलाने वाला वहां नहीं था। वो गाय छोटा सा पक्षी भी पहचान रहा है कि मेरा मालिक जो मुझे जिस प्यार से पुचकार कर बुलाता था आज वो यहाँ नहीं है, वो आना बंद हो गई। गायों को कितने प्यार से बाबा अपने हाथ से खिलाता। आज हम देखते वो स्थान, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, ये स्थान जहां पर हम और आप सब बैठे इस समय, यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ होता था, बड़ा ऊंचा सा पहाड़ था यहाँ पर। और हमको याद है कि इस पहाड़ पर रात का समय था, रतन मोहिनी दादी जी हम कन्याओं के साथ रात को 11-12 बजे तक बैठती थी, कोई ना कोई ज्ञान की बातचीत सुनाती। हमने सोचा आज तो ज्ञान सुनने के बाद हम योग लगाएंगे, तो हम 3-4 कन्याएं पहाड़ पर जाकर ऊपर बैठ गई और दुनियावी रूप में कह देते हैं, कहते हैं बीरबल ने, जब बीरबल से अकबर ने पूछा कि अकबर सबसे दुनिया में सबसे बड़ा झूठ कौन सा है, तो ये कहावत प्रसिद्ध है कि बीरबल ने कहा, महाराज चार माताएं एक चारपाई पर बैठी थी बड़े शांत होकर के, तो जोर से सब हिल हिला के हंस पड़े कि चार माताएं एक ही खटिया पर बैठी और शांत होकर बैठी, ये बहुत बड़ा झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और सचमुच हम योग के बहाने ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गए और सोचा आज हम रात को 1 घंटा पहाड़ी पर बैठ के योग करेंगे। जो बाबा का कमरा आप देखते हैं, कमरे के बाहर जहाँ जूते उतारते हैं, ये खुली जगह होती थी, कच्ची जगह होती थी, तो गर्मी में बाबा अपने खटिया वहां बिछवाते थे और बाहर ओपन में सोते थे। तो बाबा ओपन में सोए हुए थे और हम धीरे धीरे अपने पहाड़ी पर चढ़ गए, 12-12 का टाइम होगा, और चढ़कर जब वहां बैठे आपस में तो थोड़ी बहुत बातचीत चर्चा शुरू हो गई। बाबा को आवाज आई, कोई विस्परिंग की आवाज है, कोई आवाज हो रही है पहाड़ पर। तो बाबा गए विश्व किशोर भाई के कमरे में, उनका कमरा उस तरफ है जहां दादी भोजन खाती थी, वो विश्व किशोर दादा का कमरा था। तो बाबा ने कहा, बच्चे आज पहाड़ी पर कोई है, चलो चल के देखना है कि पहाड़ी पर कौन बैठा है, क्योंकि वो यज्ञ रक्षक केवल बच्चों का ही नहीं था, लेकिन हर रूप से बच्चों की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा वो रक्षक था। इतनी बड़ी टार्च थी, वो बाबा ने अपने हाथ में पकड़ी, हम सुन रहे हैं दादा कह रहे हैं, बाबा टार्च मुझे दो, बाबा कहते नहीं बच्चे चलो तुम, तो वो बाबा का हाथ पकड़े हुए। बाबा उनका हाथ पकड़ते हैं, वो क्या बाबा का हाथ पकड़ेंगे, तो बाबा टार्च लिए हुए, ऊपर टार्च डाली तो टार्च में लाइट में हम दिखाई दे रहे हैं कि कोई बच्चियां ऊपर बैठी हैं। तो बाबा ऊपर विश्व किशोर लेकर चढ़ गए और बाबा ने कहा, बच्ची यहाँ क्या कर रहे हो? कहा, बाबा योग लगा रहे हैं। अब योग तो बाबा को पता चल ही रहा है कितना योग लगा रहे हैं। तब बाबा ने कहा, बच्चे नीचे जाओ और अभी सो जाओ, सुबह योग लगाना। कुछ नहीं और कहा, बड़े ही प्यार से बाबा ने जो ही कहा तो हम लोग बाबा के साथ साथ नीचे उतरे और जाकर सो गए। आज आप और यहाँ बैठे हैं, ये वो स्थान है जहाँ स्वयं सर्वशक्तिवान आदि देव ब्रह्मा, जिसके तन में प्रविष्ट होकर इस यज्ञ की संभाल की, ये वो पहाड़ी का स्थल है जहाँ स्वयं बाबा चढ़ा, ये सत्य स्थान। वो झूठे स्थान तो बहुत देखे कि यहाँ मटकी फोड़ी थी तो यहाँ मटकी में मक्खन निकला था, तो यहाँ मटके उठाए थे और यहाँ घगरे उठाए थे, यहाँ ये किया था, वो यात्रा कर करके कितना समय हमने गुजारा, अब सत्यता के तीर्थ स्थल पर आकर पहुंचे। एक एक स्थान जब याद करो आप, वो स्थान था जब बाबा अपने कमरे में सोता था, सोता ही नहीं था, लेकिन एक एक ग्रुप के बच्चों को बुलाता था। और बच्चे कई बार थोड़े ज्यादा 250 बच्चे अगर आ जाते थे तो बाबा कहता था, बच्चे अब सबको लिख दो कि हॉल फुल हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा बच्चे आ नहीं सकते थे, कोई रहने की इतनी जगह नहीं थी, टेंट लग जाते थे, ये जो बाहर झोंपड़ी है यहाँ पर टेंट बाहर थोड़ा करके टेंट लगते थे और टेंट में बच्चों को रहना पड़ता था जब ज्यादा थोड़े बच्चे आ जाते थे। और बाबा अपने हाथों से एक बार टेंट में कुछ बच्चे सोए थे और रात को वर्षा आ गई, बाबा सबसे पहले जल्दी से जल्दी अपने कमरे से बाहर का दरवाजा, बाहर से भी खुलता था, बाहर से खोल करके बच्चों के पास आए और कहा, बच्चे उठो सब आ जाओ मेरे कमरे में, बाबा के कमरे में बहुत जगह है, बाबा के कमरे में चलकर सो। प्रबंध करने वाले पहुंच गए, कहा नहीं बाबा हमने इनका प्रबंध कर दिया, हम उधर बाहर बरामदे में सब जगहें बना रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे बाबा के कमरे में भी बहुत जगहें, बाबा की खटिया के नीचे भी बहुत जगह है, खटिया तो ऊंची है, बच्चे तो सो सकते हैं वहां पर भी। तो मानो जैसे माता पिता अपने बच्चों को जो गायन है कि मुख से निकाल के देते हैं, ये वो माता पिता ने अपना रोल इस धरा पर किया। आप सोचिए इस धरा में कितना बल, कितनी शक्ति और कितने सर्वशक्तिवान के चरित्र भरे हुए, किस कदर उसने अपने बच्चों की पालना की। अगर बच्चों को कुछ होता था तो ऐसा लगता था बाप को कुछ हुआ। बच्चे आकर बैठते थे और बाबा अपने बच्चों के पास खटिया पर आकर बैठ जाता था। बच्चे सब रास्ते में कुशल रहा, ठीक रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आई। दो अलमारियां रखी होती थी, एक में गर्म कपड़े होते थे, एक में ठंडे कपड़े होते थे। वो यज्ञ में पहले बच्चों ने जब त्याग किया सब कुछ तो उनके कपड़े ही होते थे वो सारे। कोई बच्चा अचानक कोई कपड़ा भूल गया है, आ गया लेकिन वो कपड़ा नहीं ला पाया है, तो ब्राह्मणिया जो लेकर आती थी, बाबा कहता था कि पहले देखो, पूछो अपने जिज्ञासुओं से कि वो कोई चीज भूल कर तो नहीं आए। अगर कोई कपड़ा भूल गए हैं तो बच्ची जाओ अलमारी से जाकर उनके साइज का कपड़ा उनको दे दो। वो ये ना समझे कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन है निकल जाएंगे, उनको वो जरूरत की चीज उनको मिलनी चाहिए। और उन दिनों में जून मास में भी ऊपर कंबल लेते थे, हल्की रजाई चलती थी, इतना ठंडा होता था। तो कई बार गर्म देश से बच्चे जब आते हैं तो समझते ही नहीं कि गर्म कपड़ा भी कोई ले जाना है, इसलिए खास बाबा ने बड़ी सी अलमारी गर्म कपड़ों की भी रखी। वहां से स्वेटर उठाओ, शाल उठाओ, कोई गर्म पैंट है, किसी को भी यूज करनी है यूज करो, यूज करने के बाद साफ करके पुनः उसको तय करके वहां रख दिया जाता था कि जो भी और बच्चे आएंगे किसी को आवश्यकता होगी। अपनी भूरी दादी यहां होती थी, सरसों का तेल है, साबुन है, नील है, कहीं अचानक कोई बच्चे नहीं लाए हों तो जब भी कोई ग्रुप आता था, दो बार ग्रुप के बीच में बेल होती थी, हाथ से बेल बजती थी, भूरी दादी चारों तरफ बेल बजाती थी, स्पष्ट कर दिया जाता था जिसके पास साबुन चाहिए, जिसको तेल चाहिए, जिसको नील चाहिए, वो इतने से इतने बजे तक आकर लेकर जाए। सभी ऐसा समझते थे अपने घर में हम आए हैं। उस समय कोई कुर्सी मेज तो नहीं थे, छोटी सी किचन थी जहां आज सामने शायद वीडियो वगैरह वाले हैं, ये क्या है मैंने अभी देखा नहीं कभी। वो छोटी सी किचन वहां होती थी बाहर, और किचन के बाहर जो बैठ के खाना खाते थे, एक बड़ा पत्थर होता था, काले रंग का पत्थर, मोटा, वो पत्थरों के सहारे वो पत्थर खड़ा होता था, वो हमारा टेबल था। और दूसरा पत्थर जो थोड़ा नीचे करके रखा जाता था, वो भी पत्थरों के सहारे दूसरा पत्थर होता था, वो चेयर होती थी। अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकता तो टेबल चेयर ले सकता है। तो पत्थर की टेबल है, बढ़िया पत्थर की आज कहीं मिलेगी भी नहीं आपको, ऐसे पत्थर की टेबल और ऐसे पत्थर की चेयर। इतना सिंपल जीवन, और ऐसा लगता था कि राजाई जीवन है, सिंपल नहीं लगता था। दाल हरहर की बनती थी ज्यादातर, दाल के दाने पता नहीं कहाँ होते होंगे, लेकिन पानी अवश्य छोंक लगा हुआ होता था, बहुत अच्छा, और ऐसा टेस्ट लगता था कि बहुत स्वादिष्ट आज चीज बनी। और सचमुच बाबा स्वयं किचन में जाते थे और जाकर पहले चख कर देखते थे, और भोली को कहते तुम बताओ तुमने भोग लगाने से पहले सब्जी को चखा है कि नहीं चखा, क्यों? वो कहती थी भगवान को भोग लगने से पहले मैं कैसे चखूं। बाबा कहते थे नहीं, अगर बच्चे खाएंगे उनको किसी को नमक ज्यादा, किसी को मिर्ची ज्यादा, किसी को कोई चीज कम लगे तो वो भोग समझ के नहीं खा पाएंगे, वो स्वाद के अधीन हो जाएंगे। इसलिए बच्ची बाबा तुम्हें अथॉरिटी देता है कि तुम भोग को चखो और टेस्ट करने के बाद बाबा को भोग लगाओ और उसके पश्चात बच्चे मेरे उस भोग को स्वीकार करें। और बाबा का भोजन पीछे अलग बनता था, थोड़ा सा भोजन लच्छू और दादी बोली दादी भोजन बनाती थी। तो जब बाबा व्यक्त हुए तो लच्छू बहन ने भोजन को चख कर हमेशा भी सब ठीक है नमक मसाला बाबा के लिए बहुत ध्यान रखती थी, बहुत प्यार होता था उसका बाबा से, चख कर भोग लगाती फिर बाबा को खिलाती। और जब बाबा व्यक्त हुए तो उसने भोग लगाने के लिए ले गई लेकिन कुछ भी चखा नहीं, किसको खिलाने आप जो मैं चखूंगी। वतन से संदेशी संदेश लेकर आई कि लच्छू बच्ची से पूछो कि दाल में आज नमक डाला नहीं, फीकी दाल है, क्या बच्ची ने चख कर नहीं भेजा है। तो बाबा ने वो बात स्पष्ट की कि ये ना समझे कि साकार में वो खाता था इसलिए चख कर देना है। अरे बच्चे, वतन में भी बाबा जो स्वीकार करता है वो तुम्हारी सब भावनाओं से स्वाद सहित चीज खाता है। ऐसा ना समझो वतन में कौन सा बाबा ने स्वाद लेना है, स्वाद के अंदर भावनाएं भी होती हैं, प्यार भी होता है, स्नेह भी होता है। जब तक वो भावना स्नेह और प्यार नहीं, चीज की वैल्यू क्या है। साधारण भी चीज हो लेकिन अगर उसके अंदर प्यार और भावना और स्नेह भरा हुआ है वो चीज साधारण भी साधारण नहीं। गायें तो हम सुनते हैं भाई बेर चक्कर खिलाए, चक्कर बेर खिलाए, उसे ये नहीं मालूम कि भगवान को खिला रही हूं, वही चक्कर वही खिला रही हूं। कहानियां तो ऐसी बनी हुई है, ये कहानियां हमको मालूम है कि जब साकार में स्वयं भगवान आए और कैसे साधारण तन में प्रविष्ट होकर जब उन्होंने इतने बड़े यज्ञ की रचना रची तो ये उस समय की गाथाएं, जिनको किसी ने किस रूप से बनाया, किसी ने किस रूप से बनाया। कुछ ना कुछ आटे में नमक वो कहानियां मिलती हैं, यादगार मिलती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सब कुछ यहां हुआ। तो आज ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, दुनिया ऐसे तीर्थों पर जा रही है। कहते हैं संदीपन गुरु जी जमुना में स्नान करने जाते थे, गंगा या जमुना, जमुना ही मैं समझती हूँ, तो श्री कृष्ण जो उनके शिष्य थे उन्होंने देखा मेरे गुरु इतनी दूर स्नान करने जाते हैं, ये गाथाएं बनी हुई है। नासिक में एक हम गए तो हमको ये दिखाया गया। तो ये वो स्थान है जहाँ भगवान ने अपने गुरु जी के लिए यहाँ गंगा ला दी थी। आज हम देखें, आज ये वो स्थान है जहां स्वयं भगवान ने अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए एक एक चीज का निर्माण किया। कैसे बैठकर बाबा पौधों को देखते थे और अंगूरों की बेलों को अपने हाथों से बाबा पनपाते थे, उनको देखते थे ठीक चल रही है कि नहीं। और जब फर्स्ट टाइम अंगूर हुआ था लगभग 40 मन, कितने मन अंगूर उतरा था, बहुत अंगूर उतरा था और इतना बड़ा अंगूर था जो बाबा ने सब सेवा केंद्रों पर तो भेजा लेकिन जो अपनी मामा का लास्ट डे था तब हम यहीं थी। तो हमने देखा कैसे बाबा ने कहा मामा इतना अंगूर उतरा है, सब वत्सों को तुमने अपने हाथ से खिलाना है। मामा का एक ही शब्द हमेशा होता था, जी बाबा। और जी बाबा करके कैसे मामा को तकिए लगा दिए और ऐसे बिठाया और बाबा ने मामा का हाथ अपने हाथ में लिया और एक बहन उसमें चार चार अंगूर डालती जा रही थी और बाबा अपने हाथ से सभी वत्सों को दृष्टि मामा देती जा रही थी बड़े प्यार से और बाबा उनके हाथों से अंगूर सब बच्चों को खिला रहे और कह रहे हैं माली को भी बुला लो, दोबन को भी बुला लो, दोबी का बच्चा भी आता है उसको भी बुलाओ, कोई भी रहना जाए जो आज मामा से अंगूर न ले। ये मामा बाबा के हाथों से लगे हैं अंगूर, ये बच्चों के लिए। इसलिए बाबा को बच्चों का बहुत ख्याल रहता था। जब यहां राष्ट्रम बना, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद ही अपना विद्यालय यहां स्थानांतर हुआ। उस समय राशन पर हर चीज मिलती थी, चीनी बहुत थोड़ी मिलती थी, कोयला राशन पर है, मिट्टी का तेल राशन पर है, गेहूं राशन में, चावल राशन में, ये सब चीजें राशन कार्ड दिखाते थे। एक इंसान को इतना अलॉट होगा, उतना ही राशन मिलता था। और बाबा ने यहां पर जब भवन थोड़ा बनना शुरू हुआ तो बाबा ने कहा, बाबा से तो देखा नहीं जाता कि मेरे बच्चे तो चाय पीते हैं चीनी की, और मेरे मजदूर बच्चे गुड़ की चाय पीते हैं, इनको भी चीनी की चाय ही पिलानी। बाबा का मुझे याद है उस समय दिल्ली में लिखत आई कि बच्चे एक चीनी का ट्रक मधुबन में भिजवाओ, बाबा अपने मजदूर बच्चों को चीनी की चाय पिलाएगा। ठंडी होती बाबा को जहां अपने बच्चे दिखाई देते, वहां मजदूर बच्चे भी अपने बच्चे ही दिखाई दे, इन बच्चों को ये देना है। उस समय बाबा को किसी बड़ों से पूछा गया तो जगदीश ब्रदर ने पूछा भी इसका इंतजाम हो सकता है, तो उन्होंने कहा, राशन पर हर चीज है, एक ट्रक यहां से दूसरे शहर में जाए नहीं हो सकता, ये नहीं जाएगा। और बाबा को लिख दिया कि बाबा बहुत जगहों पर गए हैं, सब कहते हैं चीनी का ट्रक दिल्ली सेंटर से कहीं बाहर नहीं जा सकता। बाबा ने कहा, बच्चों को मालूम नहीं कि कहने वाला कौन, किस आलमाइटी का आदेश है, अभी तक बच्चों ने बाप को पहचाना नहीं। अब बच्चे कहते हैं हमने तो पहचाना है, लेकिन जिन द्वारा काम लेना है उन्होंने नहीं पहचाना, तो उनको कैसे पहचान दे। बाबा ने कहा, ये उनका कोई कसूर नहीं, ये बच्चों का कसूर। अगर बच्चे इस विश्वास में रहें कि सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा की आज्ञा है, इस समय उसको अपने बच्चों को चीनी की चाय पिलानी है, और एक ट्रक चीनी का मधु माउंट आबू नहीं जा सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। और बच्चों को भी धुन सवार हो गई कि हम भी एक ट्रक चीनी का भिजवा के ही रहें। कोई बड़े से बड़ा नेता नहीं छोड़ा, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहां पहुंचे नहीं, और हर एक मुस्कुरा के कहता यह असंभव सी बात है, लेकिन आखिर वो संभव हुआ और ट्रक चीनी का यहां आया। ये विश्वास था, ये आंतरिक फेथ है भगवान के ऊपर कि ये बोल है किसके। हम कई बार अपने बोल मिक्स करके कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, बड़ा मुश्किल, बाबा तो कह रहा है लेकिन ऐसा कैसे होगा। अरे बाबा कह रहा है, भगवान कह रहा है, और ऐसा होगा नहीं, ये शब्द आया कहां से। और वास्तव में देखा जाए निश्चयात्मक साकार बाबा, निश्चयात्मक अपनी मामा, निश्चयात्मक अपने बड़े भाई, और निश्चयात्मक अपनी दादियां, उनके दृश्य हमने देखे कि निश्चय क्या चीज होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। तभी बाबा ने कहा हुआ है, संपूर्ण निश्चय अंत में केवल 8 आत्माओं को ही होता है, बाकी सब निश्चय में नंबरवार। कोई कहेगा निश्चय है तभी तो हम ज्ञान में चल रहे हैं, निश्चय बहुत बड़ी चीज है। उस पर बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की दो ही तो निशानियां बताई हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा निश्चिंत होंगे, किसी बात की कभी उनको चिंता नहीं होगी, और सदा उनको ये संकल्प दृढ़ है कि ये निश्चित है, जो कुछ घटित घट रहा है, पुरुषार्थ के समय 20 नाखून का जोर लगाएंगे, परिणाम के समय निश्चित है, जो हुआ वही होना, कभी अवस्था उनकी हिलेगी नहीं। ये निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां। हम और आप सब अपने आप से पूछे कितना निश्चिंत रहते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चिंता तो आएगी, चाहे बाद में कहेंगे बाबा बैठे हैं, मजबूरी से कह देंगे, फिर कह देंगे। साकार बाबा के सामने कोई कम टेस्ट नहीं आए, जिसके पास 400 बच्चा खाने के लिए बैठा हो और उस पिता के पास शाम के भोजन का इतनी सी चीज भी ना हो, उसको कितनी चिंता हो सकती है कि बच्चों को संशय आ जाएगा, भगवान के आगे समर्पित किया और भगवान ने हमको खिलाया नहीं, भूखा मार दिया, तो दाता है। लेकिन साकार बाबा सदा यही कहते, इसको क्या चिंता है, यज्ञ उस सेठ का है, सेठ को चिंता है, सेठ के कर्मचारी को कोई चिंता नहीं। मैं तो साक्षी बन के सब दृश्य देखता हूं और देखकर एंजॉय करता हूं। कैसे कैसे बाबा के सामने टेस्ट आए, लेकिन उस बाबा ने इस निश्चय का यज्ञ रचा किसने? आप सोचिए, स्थान क्या स्थान था जब पहला स्थान लिया था, जहां पर हैदराबाद सिंध कराची से प्लेन आया जब, और वहां पर बंदरगाह पर उतरने के बाद जब उनको यहां लाना था, तो बड़ी दीदी और कुछ अन्य दादियां जब इस स्थान को सिलेक्ट करने के लिए आई थी, तो किसी ने उनको राय दी थी कि आपको जितना बड़ा स्थान चाहिए इतने लोगों के लिए, वो स्थान केवल आपको हो सकता है तो माउंट आबू में मिलेगा। क्योंकि उस समय राजे लोग अपने फार्म हाउसेस, जिसको आज कहते हैं, ऐसे पहाड़ों पर अपने भवन बना के रखते थे। उनके भवन, बड़े बड़े भवन आपको मिल सकते हैं, बाकी आपको इतना बड़ा स्थान और कहीं नहीं मिलेगा। और जब माउंट आबू में पहला भवन ले लिया और बाबा को लिख दिया कि बाबा आज है ये भवन ले लिया गया है, और जब बाबा वहां पर बच्चों को लेकर चल पड़ा है, उस समय दादी ने, दीदी बड़े थे, उन्होंने देखा इतना बड़ा अजगर है और वो भवन के अंदर जाता है और भवन से बाहर जाता है। इसका मतलब कि अजगर ने अपना भवन अपने निवास स्थान बनाया, उसका बिल जरूर यहां है, इसलिए वो बाहर भी जाता है अंदर भी आता है। और अगर कोई काट खाया किसी को, किसी ने प्राण तज दिए, तो क्या होगा? बहुत चिंता लग गई कि हमने बाबा को कह दिया, बाबा भवन देख लिया है, भवन तो देख लिया, बच्चे तो इतने रह सकेंगे, लेकिन ये सांप तो देखा नहीं था। तो अपनी दीदी सुनाते थे कि बहुत डर के हम जब बंदरगाह पर पहुंचे, तो बाबा को ऐसे पकड़ के बाजू में एक साइड में ले गई और जाकर कान में कहा, बाबा हमने देखा नहीं था, लेकिन इस भवन के अंदर एक बहुत बड़ा अजगर रहता है, मैंने उस अजगर को अंदर आते और बाहर जाते देखा है। तो बाबा ने कहा, तो क्या हुआ बच्ची, तो क्या हुआ? बाबा तो बच्चों को एग्जाम्पल देता है ना, कि कैसे सर्प की केंचली जब ऊपर नहीं आ जाती है तो नीचे से वो निकल जाता है और ऊपर की पुरानी केंचली उसकी उतर जाती है, पूरी की पूरी केंचली सांप की न्याय पड़ी होती है। प्रैक्टिकल मेरे बच्चे ये दृश्य देखेंगे, ये तो थ्योरी सुनाता था बाबा, ये तो स्थान बहुत बढ़िया है। तो बाबा ने बच्चों को कैसे निश्चिंत कर देता और निश्चिंत करके उसकी वैल्यू बताता, इसकी वैल्यू है, ये वैल्यूलेस चीज नहीं है। तो कैसे बाबा ने केवल ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन अपने हाथों से बच्चों को मुंह में गिट्टियां डाली। हमको याद है जब बाबा भोजन पर बैठते थे, छोटा हॉल जब बना था तो बाबा ब्रह्मा भोजन के लिए बच्चों को साथ लेकर बैठते थे, नीचे ही बैठते थे कई बार, कभी कभी ऊपर चौकी पर बैठते थे ताकि मैं सब बच्चों को देख सकूंगा, और कई बार चौकी के ऊपर संदेशियां बिठाते थे जो भोग लगाती थी, बाबा मम्मा भी नीचे ही बैठते थे, तो सब बच्चों के आगे भी भोजन की थाली आती, बाबा के आगे भी आती। और कई बार बच्चे, जब पहले छोटा हॉल था जहां पर यीशु बहन का ऑफिस है, यही एक हॉल कहलाता था, वो खुला सा था, ऐसा खराब सी जगह थी, यही क्लास होती थी, ये छोटा हॉल तो बहुत पीछे बना, उस समय वहां क्लास है और बाबा मामा बैठते थे, तो भोजन हमारे भी आगे पड़ा है, भोजन मामा बाबा के आगे भी रखा है, और सब बच्चे भोजन अपना तो नहीं देख रहे हैं, ना दृष्टि दे रहे हैं, मम्मा बाबा के भोजन को दृष्टि दी जा रही है। आप क्यों दृष्टि दे रहे हैं ये बता सकते हो आप, कि थोड़ा सा गिट्टी का हमको भी मिल जाएगी, और माँ बाप पहचान जाते हैं बच्चा देख क्यों रहा है, तो बाबा कभी किसी को आओ इधर, तो अपने भोजन से गिट्टी उसके मुंह में डालता, दूसरा समझता मेरा भी नंबर आया, वो तो बिल्कुल तैयार ही हो जाता कि वो तो चलो बुलाया गया, मैं तो तैयार ही बैठा हूं। और कभी लच्छू आके कहती बाबा सबको भोजन दे दिया, सबको घूर के देखती, कोई ना उठना, कोई लच्छू को नहीं देखता, बोलने दो लच्छू घूरती है घूरने दो, लेकिन हम तो, और बाबा कहते आओ बच्चे आओ, सारा भोजन बाबा गिट्टियों में खिला देता, अपने हाथ से खिलाने में जो बाबा को अच्छा लगता वो अपनी थाली में खाएंगे, लेकिन मैं तो अपने हाथ से अपने बच्चों को खिलाऊंगा। क्या छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बड़े थे, हर एक को अपना बड़ापन खत्म हो जाता था, मैं दादा हूं, मैं पिता हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं फलां हूं, नहीं मैं बाबा का बच्चा हूं। कैसे घुटनों के बल, क्योंकि आने में भी तो टाइम लगेगा, घुटनों के बल ही आ जाओ, आते हुए जल्दी से जल्दी गिट्टी मुझे मिले, फिर घुटनों के बल ही वापस जाके बैठ जाओ। अल्लच्छू देखती रहती थी, अच्छा खा लो अब सब आके, फिर मैं दोबारा डालूंगी, अपना भोजन पड़ा रहता था, लेकिन बाबा को बहुत अच्छा लगता था मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊं। और कभी थोड़े ज्यादा बच्चे आ जाते थे तो बाबा को बहुत खुशी होती थी, खुशी होकर बाबा कहते थे इनको वैरायटी चीजें खिलाऊंगा। और पूना में एक हलवाई थे तो बाबा उसको लिखते थे बच्चे तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, मेरे बच्चे आए हुए। और पूना का हलवाई उसको बाबा को आगे खड़ा होता, बाबा आ गया हूं मुझे बताओ क्या बनाना है, तो बच्चे तुम जलेबी बनाओ और गुलाब जामुन बनाओ, इतनी जलेबी इतना गुलाब जामुन, वो तो ना जाने कितनी जल्दी बना के आ जाता। बाबा कहता ये तो भूत है, इसको तो अभी एक चीज बताता हूँ ये बना के आता है, दूसरी बात पूछता अब मैं क्या बनाऊं, तो बाबा कहता उस भूत को तो कह दिया ऊपर चढ़ और नीचे उतर, इस भूत को क्या कहूं, ये भूत तो बहुत ही तेज। और बाबा ले आते थे कई बार गुलाब जामुन डब्बों में बना के रख देता था, तो बाबा गरम गरम गुलाब जामुन है तो गरम गुलाब जामुन एक एक बच्चे को अपने हाथ से खिलाने आता है, गरम ठंडा कर करके मुंह में, कोई कहेगा देखो मुंह में क्यों खिला रहे हम खा सकते हैं ना, अरे जो अपने हाथ से प्यार से खिलाने में आता है वो आपके खाने में क्या आएगा। बच्चा खा सकता है, कई बार माँ अपने हाथ से खिलाती है उसको अच्छा लगता है। ऐसे प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को पाल और पोस कर बड़ा किया, खाली ज्ञान से बड़ा नहीं किया, उनके जीवन को दिव्यता में भी बड़ा किया। तो मैं कहूंगी ऐसे स्थान पर जब आप आए हैं तो ये कम स्थान नहीं है, आपको साकार में प्यारे माता पिता की पालना का यह अनुभव मिलेगा। कण कण में आप देखिए, जर्रे जर्रे में जो कहा भगवान व्यापक है, ये वास्तव में कण कण में उसकी स्मृति व्यापक है। यहाँ बाबा सोते थे, यहाँ बाबा जागते घूमते थे, यहाँ बाबा की कोटे जो बच्चों से पर्सनल बात करते थे, ये बाबा की क्यारी जहाँ बाबा बैठ के बच्चों को फूल दिखाते थे। बाबा ने क्यारी में छुई मुई का पौधा भी लगा दिया हुआ था, टच मी नॉट। हम बच्चों को ले आते थे, आओ बच्चे मैं तुम्हें पौधा दिखाऊं। जैसे पिता को बड़ी खुशी होती है कोई नई चीज घर में आई है, तो बाबा बच्चों को प्यार से लाके, कई फोटोज बनी हुई जिसमें बाबा अपने पांव घुटनों के बल ऐसे पांव के बल बैठ करके सब बच्चों को बैठ जाओ यहाँ, अब लगाओ इसको हाथ, बस ऐसे करो, बूटी पहले ही ऐसे हो जाती, फिर दूसरे को कहते तुम करो इसको, वो भी आया ही हाथ यहाँ तक ही आएगा तो बूटी ऐसी हो जाती। बाबा कहते देखो ऐसे मेरे छुई मुई बच्चे, थोड़ी सी बात हो जाती मुरझा जाते, ये देखो मुरझा के फिर खड़ा हो गया, मेरे बच्चे तो कुछ दिन तक मुरझा ही रहते। छुई मुई पौधे से भी गए गुजरे, जिस पर बाबा का एक एग्जाम्पल मैं कई बार सुनाती हूँ, पूरा हो गया, गीता बहन जी आ गए हैं, बस मैं लास्ट यही सुनाती हूँ कि बाबा अपने बच्चों को कहते थे अरे बच्चे, पशु में भी अकल है, पक्षी में भी अकल है, समय होता है, घर में घर की तरफ उड़ान भरता है। मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, बच्चे घर जाने का समय, अभी यहां से अपना डोरी डब्बा जो है फैलाओ नहीं, कोशिश करके समेटते हुए अपने उसी अनादि स्वरूप में आ जाओ जिस स्वरूप से मैंने आपको भेजा था। तो बाबा एक बार एग्जाम्पल दे रहे थे कि देखो, बाबा ने मुरली में कई बार ये एग्जाम्पल आया भी है बाबा का, थोड़ा नक्शल में बाबा ने हिंट दिया कि गाय, यहाँ की गाय केवल आधा किलो ही दूध देती थी, और बाबा चाहता था मैं अपने बच्चों को ताजा ताजा दूध पिलाऊं, लेकिन इतना गाय का दूध होता नहीं था। तो बाबा ने एक बच्चे को कहा, जाओ बच्चे सिरोही से गाय लेकर आओ, वहां गाय दूध ज्यादा देती है। और सिरोही से गाय ले आए, और बाबा ने गाय देखी तो बहुत अच्छी बात है, गाय को बाहर बांध दिया गया। अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि गाय मिली नहीं, एक दिन के बाद ही गाय गुम हो गई। तो बच्चे ने आकर कहा कि बाबा, जो गाय सिरोही से लाए थे मिल नहीं रही है। बाबा ने कहा है बच्चे, ढूंढो। कहा बाबा सब जगह ढूंढ के आया, जंगल में ले जाता था गायों को, लेकिन वो गाय मिली नहीं। बाबा ने कहा कि कई गायों को कुछ आदत होती है, कोई खाली स्थान गुफा सी होती है उसमें जाकर बैठ जाती, कई गायों को संस्कार आदत होती है पानी के किनारे जाकर बैठती हैं, कई कहीं गाय जहां ज्यादा घूमती है वहीं जाकर बैठती है। तो आप ऐसी जगहों पर देखो, यो जाओ पहले उसके मालिक से पूछ कर आओ। तीसरा दिन हो गया था, मालिक से पूछ कर आओ कि तुम्हारी गाय को कोई ऐसी आदत तो नहीं थी, क्योंकि हमारी गाय गुम हो गई, हम कहां उसको ढूंढें, खाली उससे परिचय पूछ कर आओ। तो जब मालिक के पास पहुंचे और कहा, आपसे जो हम गाय अभी 3 दिन पूर्व खरीदी थी वो हमारी गुम हो गई, हमारे बड़ों ने भेजा है कि पता करके आओ। तो उसने सुनते ही कहा कि गाय आज सुबह ही मेरे पास पहुंच गई। आप सोचिए, माउंट आबू से आबू रोड, आबू रोड से सिरोही कितनी दूर है। तो बच्चे ने आकर कहा कि बाबा, गाय तो सिरोही अपने मालिक के पास पहुंच गई। बाबा ने कहा, रे बच्चे, एक गाय भी अपने मालिक को नहीं भूल सकी, मालिक का बिछोड़ा नहीं सहन कर सकी, और मेरे बच्चे जो मुझ बाप से 5,000 से बिछुड़कर यहां आए हैं, आज मालिक आया उनको घर ले चलने के लिए, वो कहते बाबा तेरी याद भूल जाती। अरे पशु से भी कम गए गुजरे बच्चे हो गए, पशु को भी समझ। ओम शांति।